चाहत को स्पेशल फील करवाने के लिए आहान ने उसके लिए खास इंतजाम किए थे। उसने अपने हाथों से उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था और गार्डन एरिया में स्पेशल अरेंजमेंट्स किए थे। चाहत के साथ ब्रेकफास्ट करते हुए आहान ने पहली बार उसे अपने दिल की काफ़ी सारी बातें शेयर की थीं। वो दोनों बातें कर रहे थे तभी आहान के पास तनु का कॉल आया और उसने आयुष की मेडिकल कंडीशन के बारे में बताया। तनु के हिसाब से आयुष की हालत इतनी ख़राब नहीं थी, अगर उसे अपनों का प्यार मिले तो वो जल्दी ठीक हो सकता था। आयुष को ठीक करने के लिए तनु ने आहान को उसे अपने साथ रखने के लिए कहा। चाहत आहान के साथ ही रहती थी, इसलिए आहान ने बात को डालते हुए कॉल कट कर दिया था। तनु से बात करने के बाद आहान ने चाहत के चेहरे की तरफ देखा और स्माइल करते हुए कहा, ज़्यादा मत सोचो, मेरी लाइफ में हज़ार प्रॉब्लम्स है और मैं तुम्हें उन सब के बारे में नहीं बता सकता, पर मैं नहीं चाहती आप प्रॉब्लम में रहें। अगर आप मुझे बताएंगे तो आपको गुस्सा भी नहीं आएगा और क्या पता मैं कुछ सोल्यूशन बता सकूं। प्लीज़ बता दीजिए, चाहत ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा। आहान ने उसकी बात पर हामी भरी और कहा, ओके, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बट आई डोंट नो कि तुम्हारा क्या रिएक्शन रहेगा। मुझे एक्सेसिव एंगर डिसऑर्डर है, इस बारे में तुम जानती हो, लेकिन मेरे भाई को भी पैनिक अटैक्स आते हैं। हमारी ये बीमारी जेनेटिक्स नहीं है, लेकिन जिसने भी दिया है वो शख्स एक ही है। मैं तुम्हें उसके बारे में बात कर परेशान नहीं कर सकता। मेरी अभी अभी तनु से बात हुई थी और उसने बताया कि मुझे अपने भाई आयुष को अपने साथ रखना होगा ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। आहान ने इस बात की परवाह के बिना सब कुछ सच बता दिया कि सच जानने के बाद चाहत उसे जज भी कर सकती हैं। बस इतनी सी बात थी और आप इतना सोच रहे थे, चाहत ने सिर हिलाकर कहा। फिर वो कुछ सोचते हुए से बोली, मैं स्टडी में इतनी अच्छी नहीं हूँ और ना ही मुझे इन सब बातों के बारे में पता है, लेकिन एक बात जानती हूँ कि किसी अपने का साथ और प्यार हो तो हम बड़ी से बड़ी बीमारी को हरा सकते हैं। आपको अपनी फैमिली को आप दोनों भाइयों की बीमारी के बारे में बता देना चाहिए ताकि वो आपको सपोर्ट करें। आहान के मुंह से फैमिली का नाम सुनकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस हार्श होने लगे। उसने गहरी सांस लेकर छोड़ी और खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, मेरी कोई फैमिली नहीं है डॉल। लगभग 3 दिन पहले मेरी मॉम का एक्सीडेंट हो गया था और उनका एक्सीडेंट करवाने वाला शख्स कोई और नहीं, मेरा बाप था। बस उस रात तभी मैं इतने गुस्से में था और तुम्हारे साथ पहली बार वो सब, बोलते हुए आहान ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। फिर वो कुछ पल रुककर बोला, मैं सच कहूँ तो उस इंसान की वजह से हम दोनों भाइयों की लाइफ बर्बाद हो गई। मैं बचपन से खुद से लड़ रहा हूँ, इस बीमारी से लड़ रहा हूँ, लेकिन ये नहीं जानता था कि मेरे भाई की भी यही हालत है। मॉम हॉस्पिटल में है, उन्हें कब तक होश आएगा इस बारे में डॉक्टर्स भी नहीं जानते। ऐसे में आयुष के लिए सिर्फ मैं ही रह जाता हूँ, लेकिन वो यहाँ आया तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा और तुम्हारे बिना मैं अपने गुस्से को काबू नहीं रख सकता। आहान ने अपनी पूरी उलझन चाहत को बता दी थी। चाहत ने जवाब में कहा, आप मुझे कहते हैं कि ज़्यादा सोच मत करा करो और खुद ही ओवरथिंकिंग कर रहे हो। मैंने कहा ना, हम सोल्यूशन निकाल लेंगे। आप ऐसा कीजिए कि अपने भाई को यहाँ ले आइए। आप उन्हें बोल दीजिएगा कि मैं आपकी थेरेपिस्ट हूँ या कोई पर्सनल असिस्टेंट, हम मिलकर उनकी केयर करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। चाहत के चेहरे पर आयुष के लिए फिक्र देखकर आहान को दिल में सुकून सा महसूस हो रहा था। चाहत की आंखों में सच्चाई थी और वो किसी का बुरा नहीं सोचती थी। एक पल के लिए आहान को खुद पर शर्म महसूस होने लगी थी कि इतनी अच्छी लड़की के साथ उसने क्या कुछ नहीं किया। आहान अगले ही पल उस मोमेंट से निकल गया और उसने चाहत के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, सबकी इतनी फिक्र करती हो, कभी खुद के बारे में भी सोचा है या नहीं? कब तक आधी रात तक दूसरों के यहाँ जॉब करती रहोगी? लेकिन अब तो नहीं कर रही ना, मम्मा का इलाज आप करवा रहे हो। हाँ, ये बात अलग है कि ना जाने मैं आपके पैसे कब चुका पाऊंगी। प्रॉमिस करती हूँ आपके सारे पैसे वापस दे दूंगी, चाहत ने मासूमियत से मुस्कुराकर कहा। उसकी बात सुनकर आहान हंसते हुए बोला, देखो अब तुम मुझे एम्बैरेसिंग फील करवा रही हो, तुम ऑलरेडी मेरे लिए काफी कुछ कर रही हो, ऊपर से वापस पैसे देने की बात मत करो। वैसे भी अब हम एक दूसरे से जुड़ चुके हैं, एक दूसरे के हो गए हैं, तो जो कुछ भी मेरा है वो सब तुम्हारा ही है, चाहे तो आज ही मेरे सारे पैसे वापस कर सकती हो। चाहत ने आहान की बात का कोई जवाब नहीं दिया, या वो इस वक्त उसकी बात का कोई जवाब देना भी नहीं चाहती थी। आहान की बातों से उसके इरादे साफ जाहिर हो रहे थे कि वो चाहत के साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहता है। चाहत ने बातचीत का रुख बदलते हुए कहा, हाँ अभी तो पूरी लाइफ पड़ी है तो बाद में सोचते रहेंगे, अभी आपके भाई को लाने चलते हैं, आप उनकी फिक्र मत कीजिए, हम सब साथ रहेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। और आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई कि आपकी मॉम हॉस्पिटल में है, आप उन्हें देखने तक नहीं गए होंगे? हाँ, क्योंकि उन्हें इस हाल में देखने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, उनके होश में आते ही मैं चला जाऊंगा, आहान ने जवाब दिया। चाहत ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर वो दोनों वहां से आयुष के लिए हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गए। तनु के हॉस्पिटल जाने से पहले आहान ने गाड़ी मित्तल हॉस्पिटल की तरफ ली। चाहत को लगा आहान का भाई भी इस हॉस्पिटल में है। आहान ने हॉस्पिटल के आगे गाड़ी रोकी और चाहत की तरफ देखकर कहा,
जाओ जाकर अपनी मम्मा से मिल लो। पहले आपके भाई से मिलते हैं, फिर बाद में मम्मा से भी मिल लेंगे, चाहत ने जवाब दिया। आहान ने गाड़ी से उतरकर चाहत के लिए दरवाजा खोला और कहा, जाओ जाकर अपनी मम्मा से मिलाओ, और हाँ, मेरे भाई का नाम आयुष है और वो इस हॉस्पिटल में नहीं है, वापस आते वक्त तुम्हें मैं यहाँ से पिक कर लूंगा। लेकिन हम तो आपके भाई को लाने जा रहे थे, फिर हम इस हॉस्पिटल क्यों आए हैं, चाहत ने हैरानी से पूछा। कल रात को आहान चाहत के अपनी मम्मा से मिलने की वजह से गुस्सा कर रहा था और अब वो खुद उसे वहां लेकर आया था। हाँ, क्योंकि जिस तरह तुम मेरी फैमिली को अपनी फैमिली समझ रही हो, उसी तरह तुम्हारी फैमिली भी मेरी फैमिली ही है। मुझे तनु से कुछ बात करनी होगी, मुझे यहाँ आने में 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, तो तुम आराम से मम्मा के साथ टाइम बिता सकती हो, आहान ने जवाब दिया। जाने से पहले उसने चाहत के फोरहेड पर हल्का सा किस किया और उसे बाय बोलकर वापस गाड़ी में आ गया। आहान गाड़ी के अंदर बैठ गया था और वहां से चला गया था, फिर भी चाहत वहीं पर खड़ी उसे देख रही थी। उसने आहान के जाने के बाद धीरे से कहा, कभी कभी आपके जेस्चर्स इतने स्वीट हो जाते हैं कि किसी को भी आपसे प्यार हो जाए। काश हमारे बीच में वो सब नहीं हुआ होता तो सच में आज हमारा रिश्ता अलग होता। आहान और मेरे दिल में आपकी केयर के साथ साथ प्यार भी होता। ना जाने क्यों आपके इतना कुछ करने के बावजूद भी मैं आपसे प्यार नहीं कर पा रही हूँ। शायद साथ रहते हुए मेरे दिल में आपके लिए फीलिंग्स आ जाए, पर फिलहाल इस वक्त ना चाहते हुए भी वो सब बातें याद आ जाती हैं जो आपने मेरे साथ किया था। भले ही सब अनजाने में हुआ हो, लेकिन आपने मेरे शरीर के साथ साथ मेरी आत्मा को भी जख्म दिया है। बोलते हुए चाहत को एहसास भी नहीं हुआ और उसकी आंखों से आंसू का कतरा बह गया। चाहत वहां खड़ी थी, तभी अंदर जाते हुए एक आदमी उससे टकरा गया और चाहत का ध्यान टूटा। उसने तुरंत खुद को संभाला और अपनी मम्मा से मिलने अंदर चली गई।
वही चाहत को उसकी मम्मा के पास हॉस्पिटल छोड़ने के बाद आहान तनु के पास आ चुका था। वो दोनों वहां बैठकर आयुष के केस पर स्टडी कर रहे थे। आयुष भी वहीं पर बैठा हुआ था। अचानक से आयुष की मेडिकल कंडीशन आहान के सामने आने पर आयुष थोड़ा एम्बैरेसिंग फील कर रहा था और वो आहान से नजरें नहीं मिल पा रहा था। आहान ने उसकी सिचुएशन समझते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, याद है जब तुम छोटे थे और फुटबॉल खेलते टाइम तुम्हें कोई तंग करता था तो आकर तुम हर एक बात मुझे बता देते? आज भी कुछ नहीं बदला है लिटिल ब्रदर, तुम्हारा बिग ब्रो तुम्हारे लिए हमेशा रहेगा, तो आगे से तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे और हम साथ में घर पर रहेंगे। प्लीज मॉम डैड को इस बारे में कुछ मत बताइएगा, आयुष ने रिक्वेस्टिंग वे में कहा। ठीक है, मैं उन्हें कुछ नहीं कहूंगा और तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहोगे, आहान ने मुस्कुराकर जवाब दिया। आयुष की हेल्थ को देखते हुए उसने शिवानी के एक्सीडेंट और विजय के भागने के बारे में कुछ नहीं बताया था। आहान के हाँ कहते ही आयुष खड़े होकर उसके गले लग गया। उनके इस इमोशनल मोमेंट को देखकर तनु को लगने लगा था कि आहान भले ही अपनी बीमारी को ठीक ना कर पाया हो, लेकिन अपने भाई आयुष को ठीक करने के लिए जी जान लगा देगा। दोनों को साथ में देखकर वो भी थोड़ा इमोशनल होने लगी। तनु ने उन दोनों के बीच में बोलते हुए कहा, अच्छा अच्छा अब बहुत हो गया, एक दूसरे के लिए प्यार जताना, अगर तुम दोनों ऐसे ही गले लगे रहे तो मैं रो दूंगी। अरे तुम मत रोना, खूबसूरत लड़कियां रोते हुए अच्छी नहीं लगती, आयुष ने तनु की तरफ देखकर कहा और फिर आहान से अलग हो गया। वो काफी खुश मिजाज इंसान था। ठीक है मैं नहीं रोऊंगी, लेकिन तुम्हें भी प्रॉमिस करना होगा कि तुम अपनी दवाइयां टाइम पर लोगे। दवाइयां टाइम पर लोगे तभी तुम ठीक हो पाओगे। तुम्हारे दर पर काबू पाने के लिए आहान तुम्हारे साथ रहेगा, इससे तुम अकेलापन महसूस नहीं करोगे। तनु ने आयुष को सब कुछ समझा दिया, साथ ही प्रिस्क्रिप्शन की एक कॉपी आहान को दे दी ताकि वो आयुष का अच्छे से ख्याल रख सके। तनु के सब कुछ समझाने के बाद भी आहान उससे अकेले में बात करना चाहता था। उसने आयुष की तरफ देखकर कहा, तुम गाड़ी में जाकर बैठो, मुझे अपनी फ्रेंड के साथ थोड़ा प्राइवेट टाइम चाहिए। फ्रेंड या गर्लफ्रेंड? आयुष ने स्माइल करते हुए पूछा, तो आहान और तनु जवाब में एक साथ बोले, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। हाँ ये इस तरह का बहाना मैं बहुत बार सुना है, चलिए ठीक है बाहर ही हूँ, कबाब में हड्डी नहीं बनना मुझे, आयुष ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा और फिर बाहर चला गया। आयुष के जाते ही आहान ने तनु की तरफ देखकर कहा, तनु मुझे फिर से अपनी सारी मेडिसिन और उनके प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, मैं कोई भी डोज मिस नहीं करना चाहता। चलो तुमने एक्सेप्ट तो किया कि तुम दवाइयां टाइम पर नहीं लेते और इन दवाइयों को बेफिजूल का मानते हो, तनु ने मुंह बनाकर कहा। फिर वो सारा प्रिस्क्रिप्शन आहान को मैसेज करते हुए बोली, कोई बात नहीं देर आए दुरुस्त आए, तुमने इस बात को माना तो सही कि मेरी दवाइयां काम की हैं। एक्सक्यूज मी, तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं माना है, आहान ने रूखे तरीके से जवाब दिया। तो फिर तुम्हें ये दवाइयां किस लिए चाहिए? तनु ने हैरानी से पूछा, क्योंकि आहान प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करना तो दूर की बात है, उसकी दी हुई दवाइयां काफी बार उसी के केबिन के डस्टबिन में फेंक कर चला जाता था। आहान ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और कहा, क्योंकि अब मैं भी ठीक होना चाहता हूँ, अगर इसमें ये दवाइयां 0.1% भी काम की तो मुझे खुशी होगी, मैं डॉल को और हर्ट नहीं करना चाहता, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ लेकिन एक अच्छे तरीके से, वो बहुत इनोसेंट है और मैं बस उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता। आहन की बातों से तनु को समझते देर नहीं लगी कि फिर से आहन कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से चाहत हर्ट हुई है। तो इसका मतलब तुमने फिर से उसे हर्ट किया है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो आहन? तनु ने हल्के गुस्से में कहा। बस हो गया, लेकिन आगे से नहीं करूंगा। उसको भी प्रॉमिस किया है और तुम्हें भी प्रॉमिस करता हूँ, आज से एक सिंगल मेडिसिन भी मिस नहीं करूंगा, आहन ने जवाब दिया और फिर तनु से मेडिसिन लेते हुए वहां से जाने लगा। तनु से बात करने के बाद आहन और आयुष गाड़ी में थे। आहन ने गाड़ी घर की तरफ लेने के बजाय पहले मित्तल हॉस्पिटल की तरफ ली। चाहत के पास जाने से पहले आहन ने उसे चाहत के बारे में सब कुछ बताने का सोचा। हॉस्पिटल आने के लगभग 15 मिनट पहले आहन ने आयुष से कहा, सुनो आहन, अब मैं तुम्हें एक लड़की से मिलवाना चाहता हूँ जो कि मेरे साथ रहती है। आहन की बात सुनकर आयुष हैरानी से बोला, मुझे तो लगा था तनु आपकी गर्लफ्रेंड है और यहाँ आप किसी और के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो। मैंने आपसे पूछा था कि मेरी भाभी कौन है और आपने मुझसे सच छुपाया। दिस इज नॉट फेयर भाई। मैं उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में नहीं हूँ, आहन अटकते हुए बोला। वो झूठ नहीं बोलता था, इसलिए जब भी झूठ बोलता तो उसकी जुबान लड़खड़ाने लगती थी। आयुष उसे पकड़ लेता उससे पहले आहन इरिटेट होकर खुद ही कहा, ओके फाइन, हम दोनों साथ में रहते हैं और मैं उससे प्यार भी करता हूँ। ये बात तुम उसे मत बताना वरना वो अनकम्फर्टेबल हो जाएगी। उसने मुझे फिलहाल के लिए यही कहा है कि मैं उसे अपनी असिस्टेंट के तौर पर इंट्रोड्यूस करूँ। ठीक है, आपकी बात मानकर मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप जल्दी चलिए, मुझे भाभी से मिलना है, आयुष एक्साइटेड होकर बोला। आहन के साथ आयुष अब काफी बेहतर महसूस कर रहा है। आहन को उसे पूरी तरह ठीक करना था, इसलिए उसने बिना कुछ छुपाए उसे सब सच बता दिया। अब उसे भी किसी बात का डर नहीं था। आहन और चाहत मित्तल हॉस्पिटल पहुंच चुके थे, लेकिन एक और बुरी खबर उनका वहां इंतजार कर रही थी।